मैं रात नहीं लौटा, दिन में भी नहीं लौटा, लौटा शाम 8 बजे, और इस बात का मुझे कोई दुख नहीं था। दुख क्या बल्कि खुशी थी, इसलिए कि कल हमें शहर छोड़ देना था और यह इस शहर की आखिरी शाम थी। आसमान में जो पहले 3 दिनों से बादल छाए थे, आज दोपहर के बाद से ही बरसने शुरू हो गए थे। शुरू में 1 घंटा जमकर बारिश हुई थी, मौसम की पहली बारिश, और इस समय की झीसियां पड़ रही थी। मैं पूरी तरह भीग गया था, बल्कि कहिए कि बुरी तरह, लेकिन मजा आ रहा था। दिमाग में चिंता से भले भरा रहा हो, लेकिन हर अंग में गुदगुदी हो रही थी। आते समय अपने को बचा सकता था, लेकिन फिसल कर गिरने की जब जब नौबत आई, गिर जाने दिया, यह अच्छा ही लगा। बरामदे में ही सागा ने बता दिया कि साहब ने मेरे लिए आज छुट्टी ले रखी थी। वह पूरे दिन घर पर रहे और सुबह से मेरा इंतजार करते रहे। मैंने आहिस्ते दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं भीगे कपड़ों में लथपथ अपने कमरे में पहुंचा और किवाड़ के पास थम गया। फर्श पर कारपेट थी, मेरी चप्पल यही नहीं कि कीचड़ में सन गई थी, बल्कि टूट भी गई थी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, इतनी दूरी रखते हुए कि कहीं कपड़ों और शरीर से टपकने वाले पानी से कारपेट खराब न हो जाए। बच्चे सो गए थे, पत्नी की पीठ दरवाजे की तरफ थी। कमरा साफ सुथरा और सलीके का लग रहा था। ये सारे सामान जो बिखरे पड़े थे, शायद सूटकेसों में रखे जा चुके थे, और मेरी लुंगी तकिया पर हम तह करके रख दी गई थी। मैंने चैन की सांस ली कि लोग सो रहे हैं। कल से कहाँ गायब हो, भारी आवाज में पत्नी बोली। मैंने चुपके से चप्पल खिसकाई, पंजे के बल पलंग के पास पहुंचा, लुंगी ली और अपनी जगह आ गया। पत्नी उतान हुई और मेरी ओर देखा, बड़ी ही निर्जीव और मरी आंखों से। मैं कांप उठा, उनकी पलकें सूजी थी, अंदर के कोए लाल थे। इसका मतलब था कि वे दिन में काफी रो चुकी थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम थे कहाँ कल से, उन्होंने जोर देकर दोहराया। बस इतना ही कह सकता हूँ कि कहने के पहले मैंने उनकी ओर देखा कि रंडीबाजी नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे देखा और फफक पड़ी। वे उठ बैठी और घुटनों के बीच मुंह छिपा लिया, फिर पेट के बल फैल गई। बहुत जब्त करने के बावजूद उनके गले से हिचकी फूट पड़ी और पीठ रह रह कर हिलने लगी। मैंने तो मजाक किया था, जिसे वे भी समझती थी। मैं उनके पास सरक गया, इस तरह मुझे अकेले छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे, क्या बात करती हो, मैं रह कर भी क्या कर रहा था सिवाय झगड़े के। उन्होंने बच्चे की तरह मेरे सीने पर 2-3 मुक्के मारे और गोद में सिर रखकर रोने लगे। यहाँ से चलो, अभी चलो, एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा है, दम घुट रहा है मेरा। मैं यहाँ किस तरह जी रही हूँ इसे मैं ही जानती हूँ, लेकिन अब नहीं, नहीं। अरे धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। लेकिन बात क्या हुई? कुछ बात नहीं है, बात क्या हो सकते है, लेकिन तुम मुझसे अच्छी तरह समझ सकते हो, समझ रहे हो तुम? हूँ। मैं थोड़ा गंभीर हो गया और उनके सिर पर हाथ फेरता रहा। इस बीच पत्नी की आवाज सुनकर गुड्डू बैठ गया था। उसे खांसी आने शुरू हुई थी और खांसते खांसते उठ बैठा था। वह आंखें मिचमिचाए हुए कभी मुझे देखता, कभी माँ को। क्या है बेटे, सो जा, मैंने पुचकारा। पत्नी अलग हट गई और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। पापा, आज मैंने दीपू को 2 बार पटका था, धाए धाए। वह देखने में ही लंबा और मोटा है, दम नहीं है उसमें, और बड़े उत्साह में था। ठीक है, बहादुर हो तुम, सो जा। मैंने उसके सिर को दबा कर तकिए पर रख दिया। उसने भी आंखें बंद कर ली। आज सवेरे से ही घर की याद आ रही है, वे फिर हिचकियां लेने लगी। छत से पानी टपकता होगा नीचे वाले कमरे में, पिछली बार मीटर उड़ गया था। हम यहाँ है, कौन जाने मीटर उड़ गया हो और करंट दीवार में उतर आया हो। आशा, कुसुम, गीता बड़ी बदमाश हैं, उनमें से किसी को कुछ हो गया तो। मैं गर्मी भर चिल्लाती रही कि बारिश के पहले मरम्मत करवा दो, मरम्मत करवा दो, लेकिन कौन सुनता है मेरी। आते समय दाल खत्म हो रही थी, गेहूं तो अभी 2-4 रोज के लिए होगा, पता नहीं अब भी इन सबों का एडमिशन उसमें होगा या नहीं। कहा था महीने भर के लिए ही सही, ट्यूटर तो लगवा दो, यह किया नहीं। तुम मास्टरी छोड़ क्यों नहीं देते? आज सुबह डाली बता रही थी सानू के क्लर्क के बारे में, उसके बेटे सेंट स्टीफेंस में पढ़ते हैं और वह तो बहुत बुरा हुआ। लगता है मेरी एक दिन की गैरहाजिरी में ढेर सारी परेशानियों और समस्याओं ने तुम पर धाव बोल दिया। देखे तो कहाँ कहाँ चोटें आई हैं तुम्हें, दुखी स्वर में मुंह बनाकर मैं उनका आंचल हटाने लगा। अरे यह क्या कर रहे हो, हर समय मजाक। वे दूर खिसक गई। हवा के झोंके आ रहे थे और खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें सरक रही थी। ड्राइंग रूम से रेडियो सीलोन से पुरानी फिल्मों के कुछ गीत आ रहे थे और घर में खामोशी थी। रेखा पड़ोस में कहीं अपने सीनियर वकील के यहाँ गई थी सलाह मशविरा करने। हाल में दीपू और स्वीटी वर्ड बिल्डिंग का खेल खेल रहे थे, लिहाजा बीच बीच में अंग्रेजी का कोई हर्फ उछल कर रोशनदान से हमारे कमरे में आ गिरता। देखो डियर, अपनी भाषा में पिछले दिनों एक भवभूति हो गए हैं जिनका नाम अजय है। उन्होंने बड़ी तपस्या के बाद जीने का एक नुस्खा ईजाद किया है। एक दुख हो, परेशानी हो, चिंता हो, चाहे जैसी हाय हाय हो, उसके आगे समर्पण कर दो, घुटने टेक दो। जब तक लड़ोगे परेशान और दुखी होते चले जाओगे। इसलिए हे प्रिय, कुछ सोचो मत, चारों खाने चित हो जाओ। यह जरूरी है कि अभी 9 ही बज रहा है, लेकिन बच्चे सो गए हैं और इस कमरे में कोई नहीं जाने वाला है। पत्नी उखड़ कर खड़ी हो गई। जाहिर था कि मेरा मजाक उन्हें नागवार लगा है। सुनो भड़को मत, दूसरों के सुख से अपने को सुखी मत करो, वरना सारी जिंदगी रोते गुजरेगी मेरी जान। हमारे सोचने की चीज यह नहीं है कि किसका लड़का विलायत पढ़ रहा है, बल्कि दूसरी है। देखो, हम घर पर खुश नहीं थे ना। एक ही जगह, एक ही जैसे दिन और रातें, रोज रोज का लड़ाई झगड़ा, असंतोष और ऊप और डांट टपट। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए इस जिंदगी को बदलें, नई करें, थोड़ा हंसें गाएं। आधी से ज्यादा जिंदगी इसी रोने कलपने में चली गई, लेकिन अब जो थोड़ी सी रह गई है इसे मुझो पर ताव देते हुए बिताएं। न किसी का लेना और न किसी का देना, दुनिया फोत पर चढ़े रह गए ये अपने लौंडे और लड़कियां। सालों के बाप का कर्ज नहीं खाया है, जितना होगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, जितना करेंगे उसके आधार पर रास्ता खुद चुने। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? और जब सारा जमाना ही परेशान है तो ये भी परेशान हूँ, हुआ करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा वही चिंता, वही समस्या, वही आटा दाल, वही बरसात और छत, सब हमसे पहले ही इस कमरे में पहुंचाए। और लगता यह है कि आगे भी जहां जहां जाएंगे ये हमसे पहले नहीं तो हमारे साथ साथ चलेंगे। तो ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, हमें सोचना यह है। इस लंबे बयान पर प्रतिभा की इस भयानक विस्फोट पर मैं चकित हुआ कि घोर अंधेरे में मैंने जो तीली जलाई थी वह बढ़ते बढ़ते मशाल हो गई है, और वह मशाल अब मैंने पत्नी के हाथ में दे दी है और वे उसे लेकर भादों की रात भी खेल सकती हैं। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं यह बकवास किसी नशे में कर रहा हूँ, और अगर नशे में नहीं हूँ तब तो और भी बुरा है। इतना तो साफ लगा कि अब उनकी सारी उम्मीदें ढह गई हैं और भगवान ही मालिक है इस परिवार का। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं इतनी देर से, आएंगे भी? दूर से सानू की आवाज सुनाई पड़ी। जब मैं लुंगी पर कमीज पहनने लगा तो वे माथे को हाथों में लेकर बैठ गई। अमल ताश और खजूर और गुलमुहर और पपीते के नन्हे नन्हे दरख्तों से घिरी छाती भर ऊंचाई की चार दीवारी और उसके अंदर आधे हिस्से में यह दुमंजिली इमारत और आधे में पलस्तर किया हुआ टेनिस कोर्ट। इस कोर्ट के बीच में दो स्टील की कुर्सियां हैं, इनके आगे शीशा मढ़ा हुआ दिल के आकार को एक मेज, मेज पर बियर की, गोवा की मशहूर बियर आर्लेम की चार बोतलें रखी हैं और एक खाली गिलास, दूसरी गिलास सानू के हाथ में है। पूरा टेनिस कोर्ट मरकरी की रोशनी में है और उस रोशनी में हवा के चौतरफे झोंके में उड़ती हुई हवा की फुहियां पतंगों जैसी लग रही हैं। हाय बरखुरदार, आपका जवाब नहीं, खैर आइए, उसने हाथ उठाया। वह भीग चुका था, उसके बाल माथे पर चिपक गए थे और उसने पानी की उनसे पानी की बूंदें टपक रही थी। तो आज घर पर ही पियेंगे खाएंगे और रात भर अगर इसी तरह बारिश होती रही तो रात भर, और आसमान देखिए जरूर होगी। उसका मूड बदला हुआ था और वह काफी खुश था। मुझे डर था कि वह नाराज होगा और शिकायतों के साथ मिलेगा, लेकिन जिस सहज भाव से मिला मुझे संतोष हुआ और मैंने सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ऐसे आपको फांसी की सजा भी दे दी जाए तो उसे कम समझिए, पता है आपने किस हद तक बोर किया है हमें? उसने गिलास मेरे हाथों में पकड़ाई और अपने गिलास उठाकर चिल्लाया, चीयर्स। ठीक है, मैं पीऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। ओए भाई साहब, आपकी सारी शर्तें मंजूर। और सारी क्या, एक ही तो शर्त रखी आपने, और लीजिए वह भी मंजूर। कल से रामलाल ऑफिस आएगा बस ना, लेकिन हाँ उससे दो बातें कह दें। नंबर एक, रिश्वत की भी एक मर्यादा होती है, एक रुपए दो रुपए यह रिश्वत है, बदनाम भी हो और कोई बात भी न बने। नंबर दो, ऐसा करते समय आदमी पहचानो, मौका बेमौका भी देखो, सिर्फ पैसा ही नहीं, समझा? वरना तुम्हारा तो कुछ न होगा, अपना कबाड़ा हो जाएगा। इस तरह पीने का यह मेरा पहला मौका था, जबकि किसी की चोरी नहीं, खुलेआम बारिश में भीगते हुए बियर पी जा रही थी और हमारे चारों ओर पत्तियों पर बूंदों की रिमझिम का संगीत बज रहा था। अरे सागा, कोई सुन रहा है? उसे इधर भेजो। तो भाई साहब, हमारे ऑफिस में इन दिनों जांच कमीशन बैठा है, एक बहुत बड़े नेता जी हैं, उन्होंने मुझसे गलत काम लेना चाहा था और वह भी मुफ्त। मैंने इनकार किया और उन्होंने कमीशन बिठवा दिया। अब यही देखिए मैंने क्यों इनकार किया। सेठ और नेता, एक फर्क है इसमें। सेठ पैसे देता है और काम लेता है और कभी जबान नहीं खोलता। नेता लोग काम भी गलत करवाते हैं अपनी नेतागिरी के रौब में, कभी कभी पैसा भी देते हैं, लेकिन हल्ला ऊपर से कि देश में घुसखोरी बढ़ रही है, बेईमानी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब तक इन्हें न रोका जाएगा, देश की तरक्की नहीं हो सकेगी। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना पड़ता है। विश्वास कीजिए, सेठ इनसे लाख दर्जे अच्छे होते हैं। सानू ने दूसरी बोतल खोली, गिलास भरी और आगे कहा, और एक बात बताएं आपको, एक अवसर पर नेता का नाराज होना अच्छा है। जनता की नजर में इसका अर्थ होता है कि अफसर जरूर ईमानदार होगा, सख्त होगा, और ये जांच कमीशन खाना पूरी है। यह एक तो जो सज्जन जांच करने आए हैं वे भी अफसर रहे हैं, और सारे अफसरों की नेताओं के बारे में एक जैसी राय होती है, वे जानते हैं कि जांच क्यों करवाई जा रही है। दूसरे इन पधारे हुए सज्जन को मालूम हो गया है कि अपने यहाँ जिस अफसर के हल्के में आते हैं उनके इनकम टैक्स का मामला देखने वाला शख्स मेरे बैच का है, यही नहीं गहरा दोस्त भी है। देखा ना, चीजें इस कदर एक में उलझी हुई हैं कि अगर आप तोप भी लगा दें तो या तो ऐन मौके पर गोला नहीं छूटेगा या ट्रिगर में खराबी आ जाएगी। रुकिए जरा। इस बीच सागा आ गया था। सानू ने उचक कर पतलून की पिछली जेब में हाथ डाला और पर्स बाहर निकाला। ए लो, इससे एक पेटी आर्लेम, और यह लो, शीश महल चले जाना और मैनेजर से मेरा नाम बोल देना, उसे फोन कर दिया था, नान चिकन चीज पकौड़ा जो कुछ दे ले आना, अपने साथ कोमल को भी ले लो। उसने उसे सौ सौ के कुछ नोट दिए और पर्स जेब में ठूस ली। यह अजीब तरह का मौसम, झीसियां उड़ रही थी, हम पानी से तर बतर थे, बीच बीच में बिजली कौंध रही थी और हम पर धीरे धीरे नशा छा रहा था। तो भाई साहब, आप जानते नहीं और जितना जानते हैं वह नाकाफी है। मसलन आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? आप समझते होंगे कि मैं भी बेईमान हूँ क्योंकि अफसर हूँ, लेकिन इस पूरे जिले में ही क्यों, प्रांत में किसी से भी मेरे बारे में पूछ देखिए, लोग रूह से कांपते हैं। मेरी शक्ति और ईमानदारी का डंका पिट चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या हूँ। अभी परसों मेरा नाम छपा था और उस अखबार में जो हिंदी का सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार है, उसमें कई बार फोटो छप चुकी है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या कहिएगा इस मुल्क को भाई साहब, जिस अखबार के मालिक से अब तक 1,00,000 ऐंठ चुका हूँ, 10-20,000 नहीं, पूरे 1,00,000, वही बार बार अपने अखबार में मेरी ईमानदारी, सेवा, निष्ठा, त्याग और कर्तव्य भावना की तारीफ के पुल बांधता है। बताने की जरूरत नहीं कि वह क्यों बांधता है, और इससे भी मजेदार बात यह कि उसे एक ईमानदार और निर्भीक पत्रकार के रूप में पद्मश्री भी मिल चुकी है अभी पिछले साल। जी हाँ, वह मैं नशे में नहीं बोल रहा हूँ, गलत मत समझिएगा, यह जरूर है कि पहली बार बोल रहा हूँ और वह भी आपसे, क्योंकि आपसे मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, एक मिनट। वह कोर्ट के कोने में चला गया और थोड़ी देर बाद लौटा। सानू मेरे आगे पहली बार खुला था और यह मेरे लिए नया अनुभव था। आते ही उसने अपनी बोतल उठाई। भाई साहब, बियर से उम्दा कोई चीज नहीं, पीजिए और पेशाब कीजिए, बात खत्म, पेट खाली। तो मैंने कहा कि आपसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए नहीं कि आप रिश्तेदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप कवि हैं, लेखक हैं, कागज कलम उठाते हैं, लिखते हैं और सोचते हैं तहलका मच जाएगा। लिखते हैं कि ज्यादा लोग गरीब हैं, थोड़े लोग अमीर हैं। तो अमीर इसलिए है कि ज्यादा लोग गरीब हैं या लोग गरीब इसलिए हैं थोड़े लोग अमीर हैं, ऐसा ही कुछ। और यह भी कि देश के अफसर निकम्मे हैं, भ्रष्ट हैं, नेता बेईमान और अनैतिक हैं और कहते किससे हैं, हमसे थोड़े बड़े अफसर से, उससे जिसका सारा ठाट बाट हमारी रिश्वत पर खड़ा है, थोड़े बड़े नेता या मंत्री से जो 10 गैर कानूनी और नाजायज काम हमसे करवा चुका है। आप उससे कहते हैं जो सत्ता में है, जिसके पास अधिकार है और जिसने आपको ऐसा कहने और लिखने का अधिकार दिया है। लेकिन आपसे पूछूं कि क्या आपने भी उसे सुनने का अधिकार दिया है? आप कहां से देंगे? आपके पास देने को है ही क्या? यह तो हुई एक बात। दूसरी यह कि मुझसे पूछिए तो आपके ऐसा लिखने का कोई अर्थ ही नहीं होता जब तक आप पॉइंट आउट न करें कि यह शख्स भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि थोड़े और ज्यादा का कोई अर्थ नहीं है, सामान्य का कोई मतलब नहीं होता, है ना? फिर भी चलिए मान लिया कि आपने एक ऐसा वक्तव्य जारी किया। अब देखिए, आपके इस वक्तव्य के बाद किसी भी अफसर, किसी भी नेता को पकड़ लिया जाए और कहा जाए कि क्योंकि ऐसा लिखा है और तुम भी एक अफसर हो इसलिए बेईमान हो, अतः नौकरी से सस्पेंड। अब चलिए कचहरी, आपके पास क्या सबूत है उसे बेईमानी का? सबूत आप के मैं कहता हूँ कि आपके पास बस की बात ही है ना, बात ही नहीं। आप क्या खाकर सबूत दे सकते हैं? अरे औरों को छोड़िए, मुझे आप सबसे अधिक जानते हैं, मुझे ही लीजिए, आप कहाँ से सिद्ध करेंगे सिवाय इसके कि आप घर के अंदर के सामान देखें और समझें कि यह बेईमानी है। खैर आगे चलिए। अब वह कचहरी से छूट गया और छूटेगा भी क्यों नहीं, आखिर कानून भी तो उसी ने बनाया है जिसे आप बेईमान और अनैतिक कह चुके हैं। आप समझते हैं कि वह इतनी आसानी से अपना गला आपके पंजे में देने का कानून बनाएगा, अपने से अपने पैरों में कुल्हाड़ा मारेगा तो कचहरी से छूट गया और बाइज्जत। मैं कहता हूँ बाइज्जत इसका नतीजा क्या हो सकता है जानते हैं आप? इसका अर्थ यह हुआ कि आप झूठे हैं, फरेबी हैं, आपने एक शरीफ आदमी की इज्जत पर कीचड़ उठाला है, उसका अपमान किया है। क्यों ना आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया जाए? और मुकदमा हो गया, आप हार गए और आप 5,000 का जुर्माना हो गया, आप कहाँ जाएंगे? और मान लीजिए उसकी इज्जत की कीमत कहीं 50,000 से ज्यादा हुई, तब तो जेल में सड़िए या कुल की नीलामी करवाइए। इसी दौरान बियर की पेटी के साथ सागा और खाने के सामान लिए कोमल आ गए। सानू ने बोतलें फ्रिज में रखवाई और उसे अम्ब्रेला लाने को कहा। जब रंग बिरंगा अम्ब्रेला हमारे ऊपर लगा दिया गया तो उसने खाने के पैकेट खोले। भाई साहब आज रात जगा होगा, रात भर पियेंगे मगर धीरे धीरे, लेकिन हाँ मैं बियर के सिवा और नहीं लेता, कल छुट्टी भी है, न होती तब भी छुट्टी लेता आपके लिए। मुझे लग रहा है कि आप बोर हो रहे थे और दीदी भी उखड़ी उखड़ी सी थी, तो आज रात भर चलेगा, एक एक घूंट चलाते चलिए। ऐसे आप चाहें तो मेरे पास स्कॉच भी है, लेकिन पहले कुछ खा लें। उसने पहले तो मुर्गे को देखकर मुंह बनाया, लेकिन तुरंत ही उसके सफेद दांत चमक उठे। अबे कोमल, जानता जनाना लोग क्या कर रहा है, इसमें से आधा उठा ले जा, बोल दे कि आज साहब लोग उधर में नहीं खाएगा, यहीं पिकनिक मनेगा। तो भाई साहब मैं कह रहा था कि आप इतना लिखते हैं, आप ही क्यों, आप जैसे सैकड़ों लोग लिखते हैं, लेकिन कोई पत्ता हिलता है, कुछ हिलाया है आप लोगों ने? उसने सिगरेट की राख झाड़ी और मेरी आंखों में देखा। फुहियां तेज और मध्यम हो रही थी, हवा थम गई थी, रेखा दिन भर की थकी हारी होने के कारण सोने चली गई थी और पत्नी दरवाजे के पास आ खड़ी हुई थी, वे हमें देख रही थी। मैंने जाकर उन्हें सोने का इशारा किया लेकिन वे खड़ी रही। हम लोग भी खा चुके थे और हड्डियां मेज पर बिखरी थी। सागा 3-4 और बोतलें लाकर मेज के निचले खाने में रख गया था। मुझ पर अच्छा खासा नशा था। सानू ने बताया था कि अगर क्रॉस न करें तो रात भर इसी तरह बैठे रह सकते हैं, कहीं कुछ नहीं होगा, वह बोले जा रहा था और उसकी बात मेरे कानों में पड़ रही थी। कभी कभी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, इसके बावजूद एक बात मेरी समझ में आ रही थी कि इतनी बोतलें पीने के बाद भी वह अनर्गल और निरर्थक नहीं हो रहा है। उसके सारे बयानों में एक सिलसिला था और वह कहीं से टूट नहीं रहा था। खैर मैं अपने बारे में बात कर रहा था। उसने गिलास उठाई और एक छोटा घूंट लिया। रेखा वकालत करती है, क्यों करती है जानते हैं आप? इसके दोहरे कारण हैं, गौर से सुनिए। एक तो मेरी वजह से उसे क्लाइंट मिल जाते हैं और आमदनी होती है, दूसरे वह बाहरी आदमी के लिए आड़ का काम करती है क्योंकि उसकी वकालत से कोई भी समझ सकता है घर में जो कुछ है अकेले मेरी कमाई का नहीं है। देखा चमत्कार आपने? इसका अर्थ है कि वह दो स्रोतों से आमदनी करती है, उसे छिपाकर भी और बाहर से लाकर भी, यानी एक ही क्लाइंट से मैं भी लेता हूँ और वह भी लेती है। मैं आयकर की चोरी का इल्जाम लगा कर लेता हूँ और वह उस इल्जाम से बरी करा कर लेती है। तो सारा कुछ बड़ा पेचीदा है भाई साहब, आप लोग यूं खिला खिला हिला कर हिलाते रहिए, यह चलता रहेगा, आप जाइए सो रहिए, मैंने पत्नी से कहा जोर से। सानू ने ध्यान से दरवाजे की ओर देखा। अरे दीदी आप जाग रही हैं, ऐसे आप माफ करेंगी, सिर्फ रात भर हम दोनों साथ हैं और सच कहिए तो मुद्दत के बाद आवारा होने की तबीयत हो आई है। मैं कुछ कह रही हूँ क्या, पत्नी बोली, इन्हें भी जितना पीना हो पी लें, इसके बाद तो मिलने से रही। ऐसा न कहिए न कहिए ऐसा, वरना मैं भाई साहब के लिए गाड़ी में कई पीपे शराब लदवा सकता हूँ। सानू मुझे देखकर हंसने लगा और उसके बाद अचानक जैसे कोई बात याद आ गई हो, उसने हंसना शुरू किया तो फिर हंसता ही रहा, यहाँ तक कि उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। हैरत है मुझे, दुख भी कम नहीं है। कभी कभी मैं सोचना शुरू करता हूँ भाई साहब को लगता है माथा फट जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो आ गए हैं, आकर फंस भी गए हैं, और मैं जानता हूँ कि दोबारा आप मेरे यहाँ न आएंगे। नहीं यह तो गलत कह रहे हो तुम, मैंने गिलास खाली करते हुए कहा। गलत मैं नहीं आप कह रहे हैं, और इसे गलत नहीं झूठ कहना चाहिए। और जनाब शराब का एक दस्तूर है और आप उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। पीने वाला शख्स बढ़ा चढ़ा कर भले बोले लेकिन झूठ नहीं बोलता, और आप बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो यह शराब नहीं है या आप आदमी नहीं है। बहरहाल आप आदमी हो या न हो यह शराब है। वह जोर से हंसा। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो बताइए कृपया कि आते ही आते आपने वापसी का टिकट क्यों खरीदा, दो दिन से गायब क्यों रहे, दीदी गुमसुम क्यों है, हमारा घर बच्चों को रास क्यों नहीं आ रहा है, जबकि हमने, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ भाई साहब कि हमने अपनी ओर से आप लोगों के लिए कुछ उठा नहीं रखा। मैंने ऑफिस से छुट्टियां ली, अक्सर समय से पहले काम निपटाया और भाग आया। रेखा जो कभी किचन में पैर नहीं रखती थी खाने पकाती रही है, और वह भी सानू के लिए नहीं आपके लिए दीदी के लिए। फिर भी आप लोगों का मुंह टेढ़ा ही है। सुनिए पहले मेरी बात तो पूरी हो लेने दीजिए। मैं निवेदन करूं कि इन बातों को आप सिर्फ अपने संदर्भ में मत सोचिए, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं। मुमकिन है आपको घटिया लगे, आप बाहर के आदमी हैं, बाहर से मेरा मतलब उतने निकट नहीं जितने कुछ दूसरे हैं। उदाहरण के लिए मेरे पिता को लीजिए, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि एक अफसर बनो, हालांकि सारा श्रेय वे खुद लेते हैं। गोया इस होने में मेरी बुद्धि मेहनत और वजीफों की कोई कीमत नहीं, फिर भी वे कहते हैं और मैं मान लेता हूँ। वे तो पढ़ा लिखा कर अफसर बनाकर मुझसे क्या चाहते थे, सीधी सी बात है, चाहते थे मैं सुखी हूँ, रुपए पैसे कमाऊँ, किसी बात के लिए दूसरों के आगे हाथ न पसारूँ, उनकी और घर की इज्जत आबरू बढ़ाऊँ, उन्हें और माँ और भाइयों को आराम और सुविधाएं दूँ। यही न, सुन रहे हैं ना मेरी बात। मैं जब इस लायक हुआ तो बोला, पिताजी अब चले आइए, आराम से अपने दिन काटिए। मैंने उनके कमरे में पंखा लगवाया, मसहरी लगवाई, डनलप का गद्दा बिछवाया, कोने में ठाकुर जी की मूर्ति रखवा दी, नौकर को हिदायत दी कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ड्राइवर से कहा अगर वे शाम को घूमना चाहें तो पूछकर जहां कहें वहां घुमा लाओ। मैं खुद 10-15 मिनट के लिए रोज उनके पास बैठ लेता था, लगता भी था मुझे कि वे बड़े खुश और संतुष्ट हैं। लेकिन 10-15 दिन बाद मैं एक दिन ऑफिस से लौटा तो पता चला कि बिना किसी से कहे अपना दंड कमंडल उठाकर गांव चले गए। जाहिर था कि मुझे बुरा लगता और लगा भी। खैर मैंने सोचा कि बूढ़े हुए कोई बात नहीं। बहुत बुलाने पर एक बार माँ आई, 4-5 दिन बाद वह भी कहने लगी मुझे गांव पहुंचा दो। मैंने पूछा कि यहाँ क्या तकलीफ है, तो कुछ नहीं बस आराम ही आराम है, यहाँ की तारीफ करते हुए इतनी खुश हुई कि रोने लगे। फिर एक एक कर भाई आए और भाई साहब आकर जो गए उनमें से दोबारा कोई नहीं आया। यह नहीं कि आने का मौका नहीं मिलता, बस यह कि कोई आना नहीं चाहता। आप बता सकते हैं कि वे क्यों नहीं आना चाहते? मैं यह हरगिज नहीं मान सकता कि उन्हें मेरे सुख से चिढ़ है, क्योंकि वे मुझसे यही चाहते थे। हाँ, बीच में एक बात और रह गई, रुकिए जरा। उसने अपनी और मेरी गिलास भरी और आधी गिलास खत्म करने के बाद एक लंबी डकार ली। पिताजी से मैंने अनुमान लगाया कि शायद इन लोगों ने से ढंग से बात नहीं कर पाता हूँ, शायद ये लोग अधिक से अधिक मेरा साथ चाहते हैं, मुझसे बतियाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि यह कितना मुश्किल काम है। आप किस चीज के बारे में उनसे बात करेंगे? रूस और अमेरिका के बारे में, विदेश नीति के बारे में, साहित्य या राजनीति के बारे में, फिल्म के बारे में, दुनिया या देश की किस समस्या के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं? लेकिन शायद वे ऐसा चाहते रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ आधे घंटे या 45 मिनट के लिए कोई आता था तो मैं उससे हंस हंस कर मस्ती से बात करता था, मगर भाई साहब आधे घंटे के लिए तो आप हंस सकते हैं लेकिन 24 घंटे और वह भी उनके साथ जो आपसे छोटे या बड़े हों। खैर यह भी चले, मैंने अपने में आदत डाली लेकिन कोई नतीजा नहीं। अब यही देखिए, आपसे तो मैं खूब बातें करता रहा हूँ और वह भी हर टॉपिक पर, मगर आप चले जाएंगे और फिर दोबारा आने का नाम न लेंगे। ऐसा क्यों है? आप समझाइए मुझे, मैं अपने दिल से देखिए यहाँ से कहता हूँ कि इस चीज को समझना चाहता हूँ। बस आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। तुम समझना नहीं चाहते हो, समझाया भी जाए तो नहीं समझ सकते। क्या बात करते हैं भाई साहब, वाह रे वाह, आप जनता को समझाने का दावा करते हैं और मुझे नहीं समझा सकते। उसने तुरंत अपनी भौहें चिटकी से मसली। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह था कि जनता आपकी बात समझ सकती है और मैं नहीं। हाँ, जनता इसलिए समझ सकती है और समझना चाहती है, मैंने जोर दिया। कवि जी, माई रेस्पेक्टेड कवि जी, आप सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहते कि मैं इसलिए नहीं समझ सकता कि आप समझा ही नहीं सकते। आपके पास घिसे पीटे कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। आप कहेंगे कि मेरा वर्ग चरित्र बदल गया है, यही न? आप 1,500 रुपए पाते हैं और पाई पाई को दांत से पकड़ते हैं और आपका वर्ग नहीं बदला, और 1,000 रुपए मासिक पाने वाले मुझ गरीब का वर्ग बदल गया। अगर मैं किसी भी हिमाकत से ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाह रहा हूँ तो इसमें किसी के बाप का क्या, और कौन नहीं चाह रहा है? क्या मैं 100 रुपए की शराब पी रहा हूँ और आप अठन्नी के चुट्टा का रस पी रहे हैं? सानू बेहतर हो चुप हो जाओ, बातें बंद। मैंने गिलास उलट कर रख दी। सारी भाई साहब, उसने झुक कर मेरी गिलास रख दी। बातें बंद नहीं होंगी, और देखिए अब तो फुहियां भी पड़ने लगी। कोई कविता ही सुनाते आप, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप सुनाइए। लेकिन उठा पटक वाली नहीं, कोई दिलदार कविता। हाय हाय, क्या कहने, कविता ये दिलदार नगर, कवि और कविता ये दिलदार नगर। वह फुहियों की तरफ अपना चेहरा करके कुछ देर तक चुप रहा। भाई साहब, अब दोष मेरा नहीं, मैंने आपको मौका दिया और आप चुप रहे। हालांकि जो आदमी दूसरों को सिर्फ सुनता रहे और खुद चुप रहे वह खतरनाक होता है, क्योंकि वह क्या सोच रहा है यह पता नहीं चलता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। आपको मालूम है हम अफसरों में कवि का क्या मतलब है? कवि का अर्थ है फटीचर, चूतिया, कामचोर, निठल्ला, चिरकुट। बुरा न मानेंगे आप, आपके लिए दिल में बेहद इज्जत है, और यह भी है कि यह अर्थ आप पर नहीं लागू होता, लेकिन जो मैंने कहा वह सच है। इसके सिवा किसी दूसरे रूप में कवि को नहीं जानता। आप जानते हैं कि साल में 1-2 बार सम्मेलन मैं खुद करवाता हूँ ऑफिसर्स क्लब की ओर से। इसके सिवा शहर में जो भी आयोजन होते हैं उसमें बुलाया जाता हूँ, और 5 मिनट के लिए सही जाता जरूर हूँ। मैं सुनता हूँ उन्हें, वे कहते रहते हैं तोड़ दो, फोड़ दो, उलट दो, आग लगा दो, जला दो, आसमान को नोच डालो, धरती को फोड़ डालो। हमारे क्लब में वे अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया शराब पीते हैं, लेकिन काफी नाराज दिखाई पड़ते हैं इस दुनिया से, इस व्यवस्था से। हम पर उनकी बातों का असर तो नहीं पड़ता, लेकिन मजा जरूर आता है। कुछ देर के लिए जायका बदल जाता है, उनकी उत्तेजना हमें बड़ी दिलचस्प लगती है। उन्हें गंभीरता से लेने की कभी हमें जरूरत नहीं महसूस होती। कभी कभी लगता है कि वे एक अच्छे मनोवैज्ञानिक केस हो सकते हैं। खैर, इन बातों को छोड़िए। शहर में गोष्ठी के नाम पर, पत्र पत्रिका के नाम पर, संस्था के नाम पर, दवा दारू के नाम पर, अपील छपवाने के नाम पर कवि लोग चंदे के लिए आते रहते हैं। बड़े साहस के साथ इस अहाते में घुसते समय बड़ी हिम्मत से काम लेते हैं, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, उन्हें चंदे देता हूँ, क्योंकि उन्हें चंदे देना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे अपने बड़प्पन का एहसास होता है। सेठों के सम्मान से कवियों द्वारा सम्मान कहीं बड़ी चीज है, हर हालत में बड़ी। आप यकीन कीजिए भाई साहब, शुरू में चंदा देने से पहले मैं बेमतलब के काम करने के लिए उन्हें ऐसे डांटता हूँ जैसे अपनी धोबिन को, जैसे सब्जी वाले को, यहाँ तक कि रहमत अली को। फिर भी वे मेरी इज्जत करते हैं, और इतनी जितनी आपकी भी नहीं करते। माफ करिएगा, विश्वास न हो तो चलिए किसी भी गोष्ठी में, चलिए देखिए लोग आपके स्वागत के लिए दौड़ते हैं या मेरे। मैंने अपनी गिलास उठाई, और उठाते समय मुझे ऐसा लगा जैसे गिलास मेरे हाथ से छूट कर गिर जाएगी। संभालते संभालते आखिरी गिलास बियर मेरे घुटने पर गिर गई। मैं शर्म से मुस्कुराया और गिलास मेज पर रख दी। रुकिए रुकिए भाई साहब, उठाइए गिलास, उसे हाथ में लीजिए, कहते कहते जबरदस्ती गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दी। हाँ, गिलास कैसे टूटती है मालूम है आपको? उसने बड़े रौब से मुझे देखा ऐसे, और उसने बियर से भरी अपने गिलास दूर फर्श पर पटक दी। शीशे के टुकड़े उछले और घिसटते हुए फैल गए। अब बताइए आप, गिलास कैसे टूटती है? आपके हाथ में है वह? हाँ, कैसे? वह क्षण भर मेरी ओर देखता रहा। आप हद कर रहे हैं, गिलास की तरफ मत देखिए और न उसकी खूबसूरती पर जाइए। ऐसी गिलासें आती जाती रहेंगी, बस तोड़िए। एक दो तीन, उसने झल्ला कर गिलास छीन लिया और पूरी ताकत से उसे ऊपर उछाल दिया। हाँ, तो अभी भी एक घंटा बचा है और हम यह नई तारीख नए गिलास से शुरू करेंगे। सागा, ओ सागा। सागा दो गिलासों के साथ हाजिर हो गया। लगा कि गिलास के टूटने की आवाज के साथ ही उसने गिलासें निकाल रखी थी। हाँ, तो नए गिलास और नई तारीख और रहमत अली। आपने पूछा नहीं कि यह रहमत अली क्या चीज है? यह रहमत अली मेरा अर्दली है और शायर भी है। मेरे मन में आया था कि आपको बता दूं, फिर सोचा बताना ठीक नहीं है, पता नहीं आप क्या सोचेंगे। यह परसों की बात है, लंच से थोड़ा पहले की। मेरे दफ्तर के आगे गैलरी में थोड़ा शोरगुल जैसा हुआ। जब कोई ऐसा आदमी आता है जो रहमत को टिप नहीं दे पाता, तो वह साहब से यानी मुझसे नहीं मिलने देता, लाख चाहने पर भी नहीं मिलने देता। जब थोड़ी देर तक बहस बाहिसा चलता रहा, तो मैंने घंटी बजाई। क्या बात है, मैंने पूछा। उसने बताया कि एक सड़ियल सा आदमी आया है जो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। कहता है साहब के घर एक लेखक आए हुए हैं, कुछ जादू फादू करके उनसे मिलना है। मैंने कह दिया कि साहब के यहाँ ऐसे आथू फालतू लोग नहीं आते, लेकिन वह अड़ा रहा। बुलाओ बुलाओ उसको, मैंने उसे डांटा और भेजा, तो पता चला कि वह रहमत को गालियां देता हुआ चला गया है। हालांकि देर तक मैं सोचता रहा कवि या लेखक वह भी रहा होगा और रहमत भी है, फिर उसने ऐसा क्यों किया। और देर तक सोचने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा भाई साहब कि पैसा बड़ी चीज है, लोभ या लाभ अपने भाई को नहीं पहचानता, जाति तो दीगर चीज है। पानी बंद हो गया था। उसने आसपास के अंधेरे में देखा, जैसे उसकी समझ में न आ रहा हो कि यह साला क्यों बंद हो गया। खैर छोड़िए, तो भाई साहब रहमत अली शायर है और मेरा अर्दली है, फिर क्या तर्कशास्त्र का सहारा लेते हुए मैं यह नतीजा निकाल सकता कि जो शायर, जो भी शायर या कवि है, मेरा अर्दली है? मैंने जब अपना सिर उठाया तो उसे अपनी ओर घूरते हुए पाया। वह झुका था और सीधे मेरी आंखों में झांक रहा था। क्या कहा है आपने? थोड़ी इंतजार के बाद वह मुस्करा कर बोला, जी हाँ, कुछ कहा है आपने? नहीं तो कुछ भी नहीं। चौंक सा गया, सिर को झटका देकर गर्दन सीधी की। आपको वहम हो गया है, रामलाल मॉनिटर, यही कहा है आपने? क्या नहीं कहा था? वह शरारत से अपने गिलास मेज पर रखते हुए बोला। मैं उखड़ गया। सचमुच जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जी नहीं, यह मैं कह ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। उसने जोर से ठहाका लगाकर झुककर मेरे बाल झकझोरे और हिलता हुआ खड़ा हो गया। उसके सिर के बाल लंबे बाल थिरक रहे थे और उनसे झड़ने वाली फुहियां फेज पर रखे गिलासों पर पड़ रही थी। सागा माचिस, वह चिल्लाया। उसने मेज के निचले खाने से डिब्बी उठाई और ओठों के बीच सिगरेट लिया। मैंने खाने में रखी माचिस उसकी ओर बढ़ा दी। रख दीजिए उसे, वह आता होगा। अबे सागा के बच्चे, वह दोबारा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया। सागा आगे मरता हुआ दौड़ता आया और उसने सिगरेट सुलगा दी। साले तेरा बाप रत्तगा करेगा और तू सोएगा, हैं? सानू ने सागा के चूतड़ पर हंसते हुए एक लात मारी। गेट आउट, अपनी इस गेटवे ऑफ इंडिया के साथ, समझा? इंडिया के साथ गेट आउट। सागा के जाने के बाद सानू मेरी ओर देखकर हंसा, मेज हटाई और घुटनों के बल मेरे आगे बैठ गया। मेरे मिस्टर साढ़ू भाई, सचमुच आपने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा ही नहीं आपने, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। आपके शरीर से एक आवाज हुई, विस्फोट, क्या कहते हैं साहित्यिक हिंदी में, ध्वनि, लेकिन नहीं, उस ध्वनि के लिए सही शब्द विस्फोट ही रहेगा। घुमड़ घमंड खटा घन की घनेरे आवे, गरज गई तो फेरी गर्जन लागीरी। किसका कविता है यह? मैंने भी हिंदी पढ़ी है कवि जी, थोड़ी बहुत जानता हूँ और शौक भी रखता हूँ। हाँ तो विस्फोट, सभ्य समाज में इसे लोग अशिष्टता समझते हैं, अशोभन समझते हैं, यहाँ तक कि बदतमीजी, गुस्ताखी, जी हाँ बदतमीजी, ऐसी आवाज सुनकर शर्माते हैं लोग, हंसते हैं, लेकिन क्यों हंसते हैं यह समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, देखिए बरखुरदार, यह आप नहीं कह सकते कि शास्त्र आप ही ने पढ़ा है, मेरा भी एक पेपर था संस्कृत कुमार संभव, तो कहा गया है शरीर माध्यम खल धर्म साधनाम, यह शरीर ही सारे धर्मों का साधन है, और चूंकि विस्फोट भी एक धर्म है, आहा फिर तर्क शास्त्र, इसलिए शरीर उसका भी साधन है। मगर लोग हंसते क्यों हैं? अच्छा तो बस अब चुप हो जाओ, होश में नहीं हो तुम, मैं खड़ा हो गया और दो चार कदम चलकर मेज के सहारे रुक गया। वहीं से बैठे बैठे सिगरेट का धुआं उसने मेरे मुंह पर फेंका, और वह धुआं नहीं बियर, जैसे वह धुआं नहीं बियर हो। जनाब होश में वह नहीं है रहता जिसे पीने को कभी नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। शटअप, मैं जोर से चीखा और गिलास, बोतल, सिगरेट, प्लेट और दूसरे सामानों को लिए लिए मेज के साथ फर्श पर लुढ़क गया। मुंह के बल हवा चल रही थी, फुहारे उड़ रही थी और पत्तियां ऐसे बज रही थी जैसे कोई सितार छेड़े चला जा रहा हो, कि इसी बीच कहीं पास में जोरदार धमाका हो गया। मेरी तंद्रा टूटी तो पास से कुछ जनाजी आवाजें आती सुन पड़ी। मैं शायद सो नहीं सका था, लेकिन जगा हुआ भी नहीं था। मेरे कपड़े सूखे हुए थे और टटोल कर मैंने जान लिया था कि मैं अपने कमरे में हूँ। ऊपर मध्यम स्वर में बजता हुआ पंखा चल रहा था। चोट बड़ी मामूली है, मेरा ख्याल है दाग नहीं पड़ेगा, यह रेखा की आवाज थी। दूसरी ओर से कोई टिप्पणी नहीं, और अगर पढ़ भी जाए तो लड़की थोड़े हैं कि शादी में झमेला होगा, रेखा ने कहा और हंसने लगी। मुझे लग गया कि मेरे शरीर में कहीं चोट आई है, लेकिन पूरे बदन में होने वाले मीठे मीठे दर्द ने असल जगह का पता नहीं चलने दिया। मैंने अपने चेहरे को जब गद्दे में धसाया तो थोड़ी में टीस मालूम हुई, लगा कि वहाँ रुई भी है और जिसे एक दूसरे को काटती हुई पट्टियों से चिपका दिया गया है। मेरी साली रेखा मिलाट, यह तो थोड़ी है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और जिसे तुमने जाने कितनी बार चुमा है। अब हंस रही हो तो हंस लो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और यह भी जानता हूँ तुम्हारे नाइट गाउन और मैक्सी और अंग्रेजी और पैंटीज और तमाम आप काप के बावजूद मेरी पत्नी तुमसे खूबसूरत और स्वस्थ है। दीदी तुम्हें याद है ना, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक कवि और लेखक की साली होने का मुझ में कितना अधिक क्रेज था। उफ, मैंने कॉलेज की सारी लड़कियों से यहाँ तक कि मैडम लोगों तक से ढिंढोरा पीट कर कहा था कि ये मेरे जीजा हैं, जिन पर तुम सब लोग जान छिड़कती हो, जिनके सपने देखती हो, वो किसी दूसरे के नहीं मेरे अपने खास चीजा हैं। याद है तुम्हें ना, मैं पागल रहा करती थी। जरा सोचो तो, कवियों, लेखकों, विद्वानों के बारे में कितने ऊंचे ख्यालात थे हमारे, और जीजा है कि इन्होंने कह करके करके जो कालीन खराब की सो अलग, मेज के शीशे तोड़े सो अलग, गिलासों, तस्तरियों और बोतलों की तो बात ही छोड़ो। लेकिन दीदी अफसोस इन सब चीजों के बर्बाद होने का नहीं है, अफसोस तो इनके घुटने और ठोड़ी के फूटने का है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ, धीरे से पत्नी बोली, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा तकलीफ तब होती है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। कभी कभी तो आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम भावुक हो, शुरू से ही इंट्रोवर्ट भी रही हो, अपनी पीड़ा किसी के आगे खोल कर रखना तुम्हारी आदत नहीं है, लेकिन जो है उसे कभी छिपाया जा सकता है। अपनी शक्ल तो देखो, मुझसे केवल 5 साल बड़ी हो, लेकिन आईने में देखो तो खुद को, बाल सफेद होने लगे हैं, चेहरा जाने कैसा हो रहा है, न ढंग के कपड़े, न लत्ते, न खाना नहीं, वहाँ मेज पर नहीं, इधर लाओ और वह दीदी को दे दो। कोमल या कोई चाय लेकर आया था, पीछे चिड़िया चहचहाने लगी थी, मुझे लगा शायद भोर हो रही है। जीजा को जगाएं, रेखा ने पूछा। वह भी चाय पीने, थोड़ा हल्के हो जाएंगे, पत्नी बोली। नहीं तो मैं कह रही थी कि एक ओर शादी के पहले के तुम्हारे सपने और दूसरी ओर यह हाल, भला इन्होंने तुम्हारे लिए कोई नौकर या नौकरानी तो रख ली होती, न इतना काम करना पड़ता और न यह हाल होता। ये एक और काम कर सकते थे, इन्होंने तुम्हें बीए के आगे पढ़ाया होता और कोई नौकरी ही दिला दी होती, ज्यादा नहीं तो 300-400 रुपए महीने में कम नहीं होते। अब मेरा ही देखो, मुझे नौकरी या काम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सानों के कहने पर वकालत पास की और अब हाईकोर्ट से ज्यादा नहीं तो 4,000 मिल जाते हैं प्रतिमास, और कहीं हमारे सीनियर ओझा बाबू इस सरकार में कानून मंत्री हो गए तो जज होना मेरा निश्चित है। चाय ठंडी हो रही है, उसे पिए तो मेरी चिंता मत करो, कहे जाओ। चिंता क्यों ना करूं भला, अब यही देखो ये बच्चे हैं, इसी उम्र में जो बनना होता है बन जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। पालिका के स्कूल में पढ़कर उजड़ और गंवार हो गए हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, ना किसी का डर ना लिहाज, और वे मेरे हैं कि किसानों ने उन्हें अगले साल देहरादून के सैनिक स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं। वे तो इसी साल उन्हें हॉस्टल में डालने वाले थे, लेकिन मेरे बहुत कहने पर किसी तरह राजी हुए। पापा यह उजड़ क्या होता है, छोटे ने मेरी पीठ में पूछा। मैं चुपचाप बिना हिले डुले पड़ा रहा। अम्मा मौसी क्या बोल रही हैं? सो जा बेटे, कुछ नहीं, देखा ने चुस्कारा। हाँ सो जा, अच्छे बेटों बेटे बड़ों का कहना मानते हैं। आए, अरे कोमल सुबह हो गई है, जरा मानस वाले रिकॉर्ड तो लगाना। हाँ दीदी, जरा यह बताओ कि को हम मकान वही है या कहीं और जमीन ली है? वही है। उसे तुम छोड़ क्यों नहीं देती, झोपड़ी जैसा वह मकान, ऐसा क्या है कि उससे चिपकी हुई हो? अब यही देखो, हमने जमीन इसी शहर में भी ले रखी है, इलाहाबाद में भी और बॉम्बे भी। बॉम्बे में लिया तो नहीं है अभी, लेकिन इनका तबादला हुआ नहीं कि ले लेंगे। हमारे बीच झगड़ा सिर्फ इस बात को लेकर है कि पहले मकान कहाँ बने। मैं प्रैक्टिस छोड़ना नहीं चाहती और पता नहीं क्यों इन्हें इलाहाबाद बहुत अधिक पसंद है। जाने क्यों इन्हें नदी और समुद्र का किनारा इतना अच्छा क्यों लगता है। अरे हाँ, सानू ने यह बताया कि नहीं कि हम सितंबर में 3 महीने के लिए स्टेट्स जा रहे हैं सरकार की ओर से। जा तो वही रहे हैं, लेकिन साथ में मुझे भी चलने के लिए कह रहे हैं। मेरे सामने सवाल है बच्चों का, देहरादून चले गए तब तो कोई बात ही नहीं, वरना सोच रहे हैं क्यों ना 3 महीने के लिए बाबूजी के यहाँ रखते, कम से कम एक बार ना निहाल तो देख लें, फिर बड़े होने पर किसे फुर्सत मिलती है, क्या राय है तुम्हारी? यही मैं कहने जा रही थी रेखा कि हमें आए 6-7 रोज हो रहे हैं, आज चले भी जाएंगे। तुमने दुनिया भर की बातें की, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा कि बाबूजी कैसे हैं, थोड़ा रुककर पत्नी ने कहा। अरे हाँ सारी दीदी, मैं भूल ही गई थी। अच्छा बोलो कैसे हैं बाबूजी? अच्छे हैं, लगा कि पत्नी हंसी है। उसने उनका उनसे उनका कहना कि रेखा ने बुलाया है, एक बार यहाँ भी आए, भूलना नहीं प्लीज, यह भी कहना कि हम उनसे बहुत नाराज हैं, कह दूंगी, और कहना कि इधर नहीं सितंबर में आए और अपने नातियों को लिवा जाएं, यह भी कह दूंगी। मगर वे कैसे लिवा जाएंगे? पत्नी थोड़ी देर के लिए रुकी। रेखा तुम्हें मालूम है कि उन्हें गुजरे हुए आज 7 महीने हो रहे हैं। व्हाट, इज इट सो? नहीं, यह सच नहीं है दीदी, रेखा का स्वर आश्चर्य से रुआसा हो उठा। दादा या किसी ने खबर क्यों नहीं दी हमें? तुम्हें तार दिया था मैंने, खुद मैंने, रेखा के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे कोमल, तार का एक फार्म तो ले आना, अभी मैं दादा को संवेदना का तार दे रही हूँ, दादा ने भी एक पत्र लिखा था। यह घर है कि मजाक, तार न मिलता तो चिट्ठी मिलती, चिट्ठी नहीं तो तार मिलता, कुछ भी तो नहीं मिला। सच कहती हूँ दीदी, इतनी चिट्ठियाँ आती हैं, इतनी कि गैर जरूरी कोई ध्यान नहीं रखता, मैं अकेले क्या करूँ। खैर दादा को अलग से एक पत्र डालूंगे और साफ साफ लिखूंगी, इस तरह संबंध नहीं निभ सकता, बताओ भला यह कोई ढंग है? दादा 5 महीने से जेल में है, इमरजेंसी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया था। यह सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या जरूरत थी प्रदर्शन करने की, बड़े नेता बनने चले हैं। कोमल देख साहब जाग गए या नहीं, पता नहीं उन्हें यह सब मालूम भी है कि नहीं। अम्मा, यह छोटे की आवाज थी, पापा की दाढ़ी में क्या हुआ है, जाकर उन्हें से पूछो, पत्नी ने उसे छेल कर परे किया। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग मौसी जी। अरे मौसा जी की दाढ़ी, दीपू और स्वीटी कमरे में आए और हंसने लगे। अरे मम्मी, मौसा जी की दाढ़ी में तो फूल खिल रहा है, स्वीटी ने जैसे ही कहा रेखा ठहाका मारकर हंस पड़ी। व्हाट अ पीस ऑफ पोयम, वंडरफुल। कवि जी यह जुमला सुनने के बाद आपको उछल कर बैठ जाना चाहिए था। अरे ओ जीजा जी, लेकिन मैं न तो उछल कर बैठा, न रोया और न हंसा। उस वक्त मन ही मन मैं अपने मृत्यु के घोषणा पत्र का पहला पैराग्राफ तैयार कर रहा था। आंसू और अपनी थोड़ी क्यों फोड़ ली, जानबूझकर क्यों फोड़ी? आंसू और गुस्से और ग्लान से मिला जुला ऐसा रसायन कि पढ़ने वाले वाह वाह कर उठें, और अगर कहीं फड़क भी उठे तो क्या बात है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि आम आदमी आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ मुहावरे में यही कहेंगे। मुहावरा याद आते ही मुझे लगा कि बनारस में इस समय लंगड़े का भाव 2.5-3 रुपए किलो आ गया होगा। खैर पहले पैराग्राफ दुरुस्त कर लेना जरूरी है। अय मेरी माँ, प्राणों से प्यारी माँ, तुम्हारी उन संतानों से मैं से हूँ जो भर पेट तुझे प्यार करना चाहते हैं, तेरा प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन तू हर जाई है। तू कभी सेठों की छाती से जाल लगी, कभी नेताओं की जांघों से जा चिपकी, कभी अफसरों के तलों से खेलने लगी, और मैं छोटी छोटी लालचों और उम्मीदों, तिरस्कारों और खुशामदों हैं और ही हीयों से बना यह मैं, अपने होने को बेहतर और आरामदेह बनाने के लिए, लोगों के बीच इज्जत पाने के लिए, जानते हुए इज्जत कम से कम और काम और अधिक आराम का नाम है, अपने और अपने रिश्तों को खुश कर रखने के लिए सही दाना जिम्मेदारियों के साथ 30 सालों से लावा की तरह धधकता रहा हूँ और